ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। माघ 9 गते होने वाली राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन के लिए कल मनोनयन पत्र दर्ज किया जाएगा। नेपाली कांग्रेस ने राष्ट्रीय सभा सदस्य के लिए उम्मीदवारों का किया चयन। बारिश और बर्फबारी के कारण देश के अधिकांश स्थानों में जनजीवन प्रभावित। मौसम में आज से क्रमिक सुधार होने का मौसम पूर्वानुमान महाशाखा का अनुमान। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सैन्य नेता कासिम सुलेमानी को दिल्ली में हुए आतंकवादी हमलों के लिए बताया जिम्मेदार। अब समाचार विस्तार से। माघ 9 गते होने वाली राष्ट्रीय सभा सदस्य के निर्वाचन के लिए कल मनोनयन पत्र दर्ज किया जाएगा। कल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मनोनयन पत्र दर्ज किए जाने की जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी है। निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकृत के कार्यालयों को संबंधित प्रदेश की उच्च अदालत रहे जिलों में स्थापना की गई है। बता दें कि 59 सदस्य राष्ट्रीय सभा के 19 लोगों की पदावधि फागुन 20 गते समाप्त हो रही है। इनमें से 18 लोगों की निर्वाचन के जरिए और एक की सरकार की सिफारिश में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। नेपाली कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय सभा की माघ 9 गते होने वाली निर्वाचन के लिए आज उम्मीदवारों का चयन किया है। इनमें प्रदेश नंबर 1 से नीर बहादुर विश्वकर्मा, मीना पुलामी मगर, राजेंद्र घिमीरे, प्रदेश नंबर 2 से नगीना यादव, भोला पंजियार, प्रदेश नंबर 3 से हरिशरण श्रेष्ठ, छली कुमारी शर्मा उपाध्याय, गंडकी प्रदेश से सूर्य प्रसाद रेग्मी, विमला गौचन, प्रदेश नंबर 5 से बालकृष्ण पांडे, गिरिजा न्योपाने, मेराज हलवाई, कर्नाली प्रदेश से दिल्ली राम पाठक, सावित्री पौड़ेल, सुदूर पश्चिम प्रदेश से प्रताप ठगुन्ना, तुलसी देवकोटा आदि का चयन किया गया है। आज शाम से ही मौसम में क्रमिक रूप से सुधार होने की जानकारी मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने दी है। मौसमविद प्रतिभा मानंदर ने बताया कि पश्चिमी न्यून चापीय वायु जो कि बुधवार पश्चिमी भूभाग से प्रवेश की थी आज उत्तर पूर्वी भूभाग से होकर गुजरेगी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि पर्यटन को आर्थिक समृद्धि का प्रमुख आधार बनाकर विकास की शुरुआत की गई है। काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने बताया कि कास्की की अन्नपूर्णा गांव पालिका को पर्यटन के लिए विकास किया जाएगा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ने कहा कि नेपाल ने हमेशा ही उत्तर और दक्षिणी दोनों ही पड़ोसी देशों से सुमधुर संबंध बनाने की कोशिश की है। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को लक्षित कर कंचनपुर की वेदकोट नगरपालिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता नेपाल ने कहा कि दोनों ही पड़ोसी देशों चीन और भारत की हो रही विकास से नेपाल को भी फायदा हो ऐसी कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 में लक्षित 20 लाख विदेशी पर्यटकों को नेपाल लाने के लिए तीनों तहों की सरकार और सरोकार वालों को मिलकर काम करने की जरूरत है। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौड़ेल ने पौष 11 गते की गई निर्णयों को गलत बताते हुए इसमें सुधार करने की बात कही है। भरतपुर विमानस्थल में पत्रकारों से की गई बातचीत में नेता पौड़ेल ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सहमति की मांगों पर निर्णय लेने के बाद ही पार्टी में एकीकरण हो पाएगा। साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी में नेतृत्व की असक्षमता के कारण ही पार्टी प्रतिपक्ष की भूमिका प्रभावकारी रूप से निर्वाह नहीं कर पा रही है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
14-15 बजारमा नयाँ के छैन। नेपाल टेलिकम का विभिन्न सेवा का अफरहरु सस्तो सारै सस्तोमा खरीद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ। त्यही भएर कण्ठ पारिराख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
14-15
मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल में भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। विमानस्थल के आवागमन कक्ष के साथ ही निर्माण की गई बुद्ध की प्रतिमा का आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई ने अनावरण किया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री भट्टराई ने कहा कि विदेशी पर्यटकों को विमानस्थल में पहुंचते ही बुद्ध की प्रतिमा को देखकर बुद्ध के देश में प्रवेश करने का अनुभव होगा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल ने कहा कि जल्द ही स्वास्थ्य नीति को लाया जाएगा। काठमांडू में आज आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ढकाल ने बताया कि स्वास्थ्य नीति में विद्यालयों के आसपास के क्षेत्रों में सुरती तथा मदिरा जन्य वस्तु की बिक्री को निषेध करने का नियम समावेश किया जाएगा। साथ ही मंत्री ढकाल ने बताया कि शिक्षा नीति में विद्यालयों को क्षमतावान बनाना प्राथमिकता में रखा गया है। साथ ही निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन करने एवं सरकारी विद्यालयों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाए जाने की जानकारी दी। प्रदेश नंबर एक को सड़क बाल बालिका मुक्त बनाने के अभियान अंतर्गत इस कार्य की शुरुआत सुनसरी की धरान से की गई है। धरान की सड़क में आश्रित 30 लोगों का उद्धार किया गया। संघीय सरकार की महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री पावत गुरुंग, प्रदेश सरकार के सामाजिक विकास मंत्री जीवन घिमीरे, धरान उप महानगर पालिका के नगर प्रमुख तिलक राय की उपस्थिति में धरान के सड़क बाल बालिकाओं का उद्धार किया गया था। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री पावरत गुरुंग ने कहा कि विकास और समृद्धि के साझा लक्ष्य प्राप्त के लिए तीनों तहों की सरकार के बीच समन्वय जरूरी है। झापा के दमक में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री गुरुंग ने कहा कि सरकार फिलहाल भौतिक पूर्वाधार विकास में मात्र सीमित न होकर मानवीय सशक्तिकरण में भी जुटी हुई है। जापान रोजगारी में जापान ने करीब 2000 से अधिक नेपाली कामदार को ले जाने की तैयारी की है। जापान फाउंडेशन ने जनवरी में 1000 और आने वाले मार्च में 1300 नेपाली कामदार ले जाने की तैयारी की है। फाउंडेशन ने एक सूचना जारी कर परीक्षा तालिका सार्वजनिक किया है। पिछले चैत्र में नेपाल और जापान के बीच कामदार ले जाने के विषयों में समझदारी हुई थी। सिंधुपालचोक में जीप दुर्घटना होने से 7 लोग घायल हुए हैं। काठमांडू से दोलखा जा रही जीप सुनकोशी गांव पालिका 7 स्थित लामो सांगू जिरी सड़क खंड से 6 किलोमीटर नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई थी। इस बात की जानकारी इलाका पुलिस कार्यालय बारावीसे ने दी है। घायलों में से एक की अवस्था गंभीर है, इन्हें इलाज के लिए काठमांडू लाया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मारे गए ईरानी सैन्य नेता कासिम सुलेमानी पर नई दिल्ली में आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को फ्लोरिडा में पाम बीच रिसोर्ट में हुआ उन्होंने कहा कि सुलेमानी ने निर्दोष लोगों की हत्या को अपना जुनून बना लिया था। उसने नई दिल्ली और लंदन तक में आतंकी साजिशों को अंजाम देने में मदद की है। ट्रंप ने सुलेमानी को मारने को लेकर मिसाइल हमले के बारे में कहा कि आज हम सुलेमानी के अत्याचारों से डरे पीड़ितों को याद कर रहे हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। हमें ये जानकर सुकून मिलता है कि उसकी आतंक का शासन खत्म हो गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 13.2 और न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। माघ 9 गते होने वाली राष्ट्रसभा सदस्य निर्वाचन के लिए कल मनोनयन पत्र दर्ज किया जाएगा। नेपाली कांग्रेस ने राष्ट्रसभा सदस्य के लिए उम्मीदवारों का किया चयन। बारिश और बर्फबारी के कारण देश के अधिकांश स्थानों में जनजीवन प्रभावित। मौसम में आज से क्रमिक सुधार होने का मौसम पूर्वानुमान महाशाखा का अनुमान। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सैन्य नेता कासिम सुलेमानी को दिल्ली में हुए आतंकवादी हमलों के लिए बताए जिम्मेदार। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।